ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिभा भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै हित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणा सवैवास्मि न जीवां तयादिना इति तं नय मां शरणं। भारतवर्ष के क्या विश्व के समस्त ऋषि लोग एकत्रित हुए थे और वो लोग बड़े व्याकुल हो रहे थे कि कलयुग आ रहा है। उस समय लोगों की चित्त वृत्ति भ्रष्ट हो जाएगी, उस समय में लोगों धर्म को और धर्म को ही धर्म मानेंगे, साधु संत लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे, गृहस्थ लोग भी अपने गृहस्थ धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, पुरुष स्त्री जैसे हो जाएंगे, स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित हो जाएंगी, किसी भी चीज में सार नहीं रह जाएगा, भगवान की कथाओं में भी सार नहीं रह जाएगा। क्यों? भागवत की कथाएं व्यवसाय के रूप में चलेंगी, लोग अपना पाठ जैसे कि कोई बिजनेस करते हैं, रुपया इत्यादि उपार्जन करते हैं बिजनेस से, व्यवसाय से, नौकरी चाकरी से। लोग विद्या उस समय में पढ़ेंगे संस्कृत, या जो नहीं पढ़ेंगे वो भी अभ्यास करके कुछ भागवत पढ़ेंगे और उसके द्वारा जीविका उपार्जन करेंगे। इस तरह से कथाओं में भी सार नहीं रहेगा, इस तरह से सारा संसार भ्रष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, बैठ जाओ मैया, बैठो बैठो बैठो, एकदम चुपचाप बैठो। लोग धर्म कर्म सभी भूल जाएंगे, उस समय क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या करना चाहिए विचार कर रहे थे उस समय में। लोग भगवान के शरण में गए, उनको यह हुआ आदेश हुआ, आप लोग तब तक पुराणों की कथा सुनिए। और उसी समय में कृष्ण द्वैपायन ऋषि के शिष्य कौन, रोमभरत उग्रश्रवा नहीं उग्रश्रवा नहीं रोमहर्षण, उस समय से उसे भागवत की कथाएं पुराणों की कथाएं सुने। उन सब लोगों ने मिलकर के ये निश्चित किया कि कलयुग मोक्ष को पार करने के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है उपाय। उसमें भी पुराणों में भी श्रीमद् भागवत, जो लोग कलयुग के इन दुर्गुणों से बचना चाहते हैं उनको श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए और श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है उसको पालन करना चाहिए। केवल कान से सुनने से नहीं होगा, होगा बहुत विलंब होगा। जो भागवत में लिखा गया है, भागवत का सार है कृष्ण के चरणों में भक्ति करना। तो जो लोग भागवत की कथा सुनेंगे, देवता देवियों की उपासना करेंगे, विभिन्न प्रकार की देवता देवियों को, वो लोग कहेंगे कि हमारा कुल का गुरु वो क्या चंडी जी हैं, कंकाली जी हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब कहेंगे और उनकी पूजा करेंगे और भागवत भी सुनेंगे। तो इसका मतलब हुआ जो भागवत सुन करके भी उनमें निष्ठा नहीं हो रही है, वो भागवत को नहीं मानते। भागवत साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं बद्ध जीवों के लिए कलयुग में। तो उनको सुन करके ठीक वैसा ही आचरण करना चाहिए। नंद बाबा, यशोदा इत्यादि सभी मिल करके इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा कि इनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए हमारा ही स्वरूप गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा करो। इसलिए इंद्र की पूजा बात करके और गोवर्धन की पूजा, अपनी पूजा कराई। इंद्र को भी अभिमान हो गया था, इस दोष के लिए इंद्र ने ब्रज को डुबाना चाहा, किंतु कुछ नहीं कर सके। उसी तरह से ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि पालन स्थिति करने वाले अपने को समझते हैं, वो भी ब्रज में कृष्ण को देख करके उनको मोह हो गया, ये मैं सृष्टि करने वाला हूं, ये क्या है। अंत में कृष्ण ने अपना उनको स्वरूप दिखलाया और अंत में उन्होंने समझा कि ये सर्वेश्वर ईश्वर समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर हैं, इनकी पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। इसी तरह से भागवत में उपाख्यान के द्वारा, दूसरे दूसरे चीजों के द्वारा बतलाया गया ये कृष्ण ही स्वयं भगवान है और दूसरे सब इनके अंश और कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत को लाख बार सुनते हैं और यह विचार नहीं आया जे कृष्ण की पूजा करने से ही सब देवता देवियों की पूजा हो जाएगी, तो वो भागवत सुनना नहीं हुआ। जितने देवता देवी हैं ये भगवान के दास दासी हैं। यदि कृष्ण की पूजा हो जाती है तो तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, यदि प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो सब, कृष्ण को छोड़कर, गीता भागवत को छोड़कर यदि दूसरे लोगों का आश्रय लेते हैं तो हमारा दुख भी दूर नहीं होगा, सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए इस भागवत को इस दृष्टि से सुने कि हमको इसमें जो सुनेंगे, इसमें जो तत्व विचार आएगा, हम उसको मान लेंगे और वैसे ही कृष्ण की उपासना एकांतिक रूप में करेंगे, कृष्ण का नाम ग्रहण करेंगे। भागवत का सार अंत में बतलाया गया, भगवान की भक्ति भी होगी कब, यदि हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। वो नाम कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं है, केवल राधा कृष्ण का नाम है, यही समस्त वेदों का, शास्त्रों का, उपासनाओं का ये सार है। इस विश्वास के साथ में इसको सुने और करें। एकादशी का व्रत जरूर करेंगे भागवत सुन करके, अम्बरीश महाराज उपाख्यान के द्वारा देखा है, प्राण चला जाएगा तो अभी एकादशी नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज के उपाख्यान के द्वारा दिखलाया, जगत के जितने दुख भी आ जाए उसको सहने के लिए तैयार है, किंतु भगवान नाम और भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए कदापि मैं तैयार नहीं हूं, ऐसा प्रहलाद महाराज जैसा होना चाहिए। उनके पिता ने उनको मारने की सारी योजनाएं बनाई किंतु मार नहीं सके छोटे प्रहलाद महाराज। ऐसे ही भगवान का आश्रय ग्रहण पर, श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करने पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी जैसा भाव होना चाहिए। भागवत को सुन करके जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण में अनन्य भाव था, कोई उनको अपना सखा समझ रहे हैं, कोई उनको अपना बेटा मान रहे हैं, कोई उनको अपना प्रियतम मान रही हैं। यदि भागवत सुन करके इन तीनों में से कोई एक भाव नहीं आया तो भागवत क्या सुना? धन धन प्राप्त हो जाए और दुख दूर हो जाए, या बेटा नहीं हो रहा है वो हो जाए, या दुख दूर हो जाए, इसके लिए नहीं। ये तो अपने कर्मों से जैसा है वो तो भोग रहे हैं या कर रहे हैं, इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि भागवत सुनने से यशोदा मैया जैसा वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति आ जाए, यदि भागवत का श्रवण करने से कृष्ण को जैसे गोपियां अपना प्रियतम मान रही हैं, उनके साथ में साधारण एक मनुष्य का बालक नंद बाबा का पुत्र मानकर, अपना प्रियतम मानकर, विवाह हो न हो किसी भी स्थिति में उनको अपना प्रियतम यदि मान ले, उनको अपना सखा मान ले, जैसे सिद्धाम सुबल इत्यादि उनके साथ रहते हैं, वैसे ही भावना करें करते करते अंत में जब प्राण निकलने को आएंगे तो यदि आपकी भावना रहेगी दूसरे जन्म में ऐसा ही भाव होकर के और चले, जैसे भक्त महाराज जी का हुआ, अंत में मरते मरते हरिण की चिंता की तो हरिण हुए, और तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण होकर के जब भगवान की उपासना करते करते भगवत चिंतन करने लगे तो भगवत चिंतन करते 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 वो बैकुंठ में चले गए। ऐसे ही करना है ये, इसलिए आप लोग इसी रूप में भागवत सुनेंगे। ये भागवत यहां की वस्तु नहीं है जगत की, आजकल हम लोगों ने इसको सस्ता बना दिया है, ₹5 में भागवत मिल जाता है, ₹5 में भागवत मिलता है, मिलेगा ₹5 में? पृथ्वी की अनंत संपत्ति भी देकर के भागवत नहीं मिलेगा। ये भागवत कहां है? जो सचमुच में कृष्ण के रसिक परम तत्व भक्त हैं उनके हृदय में। अभी तो ये अक्षरात्मक रूप में है किंतु हम इसे दर्शन नहीं कर रहे। कृष्ण का दर्शन करना, भागवत का दर्शन करना, दोनों एक बात। परीक्षित महाराज ने 7 तक भागवत सुनी। भागवत सुनने का क्या ये फल है कि सांप काट दे? उनको सांप काट दिया? सांप तो काटा नहीं, उन लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा एक हुआ। भागवत सुन करके संसार से परम मुक्त होकर के कृष्ण के परिकर बन करके गोलोक वृंदावन में वो पहुंच गए, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए निष्किंचन होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। बतलाया गया है कि पहले परीक्षित महाराज जी ने ऋषि का श्राप से 7 के बाद में मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने सुन करके संसार से वो परम विरक्त हो गंगा नदी के किनारे आकर के खाना पीना छोड़ दिया और जमुना के किनारे गंगा के किनारे बैठ गए। भारतवर्ष के सारे ऋषि महर्षि सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। क्या करना उचित है? 7 की केवल उम्र है। कोई कह रहा है जब दान करो, कोई कह रहा है जब पुण्य करो, कोई कहता है कोई व्रत करो। और इतने में सुखदेव गोस्वामी आए, वहां पर नारद व्यास उनके पिता और गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी के, और उनके भी गुरु व्यास हैं, और उन व्यास जी के और पराशर इत्यादि ऋषि हैं, उनके गुरु नारद जी हैं, और कितने बड़े बड़े ऋषि सब वहां पर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम भागवत में है। सब लोगों ने एक स्वर से ये छोटे से बालक को सुखदेव गोस्वामी को व्यास का आसन दिया। परीक्षित महाराज ने इनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भागवत का 7 श्रवण करो। 7 भागवत का श्रवण कराया। यह पहला भागवत का श्रवण है। दूसरा हुआ भक्ति देवी बूढ़ी हो गई थी। भक्ति का जन्म हुआ दक्षिण प्रदेश में और कर्नाटक इत्यादि में वो बड़ी हुई कूच, और जब सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में जब आई वहां धन धान्य की प्रबलता है, लोग भोगों में आ सकते हैं, उनको किसी ने आदर नहीं किया, आदर नहीं करने से वो बूढ़ी हो गई। उनके बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी बूढ़े हुए, कोई ज्ञान वैराग्य की परवाह नहीं करता। वृंदावन में आई वो तो नवज्योति बन गई, किंतु ज्ञान वैराग्य को किसी ने पूछा नहीं, वो बूढ़े के बूढ़े बने रहे। नारद जी बाई चांस आ गए, नारद जी को देख करके भक्ति देवी की स्थिति देख करके उनसे पूछा, उन्होंने अपने दुख का कारण बतलाया। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं पता लगा करके देखता हूं कि ये तुम्हारा दुख कैसे दूर होगा और तुम कैसे सुखी होगी और तुम्हारे बच्चे भी ज्ञान बनेंगे, ये फिर से ज्ञान लाभ करके नवजुवक हो जाए। वो घूमते घामते घामते कहीं गए हिमालय की पहाड़ों में, और वहीं पर कहीं सनक सनंदन सनातन इत्यादि चतुष कुमार जो उनके बड़े भैया और गुरु के रूप में भी वो मिले, उनको देख करके उन्होंने ये सब बतलाया, जैसे एक भक्ति देवी बूढ़ी हो गई, उनके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, क्या किया जाए। मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, पीछे से ये सब बतलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भागवत का श्रवण करो और उसको भी श्रवण कराओ। वहीं हरिद्वार में ही ये कथा बैठी और वहीं पर भक्ति देवी का वाहन किया गया, उनके बेटे भी आए, वो मूर्छित अवस्था में 7 दिन तक भागवत की कथा हुई और उसमें भक्ति देव को परम उल्लास हुआ और ये उनके बेटे भी युवक युवक से हो गए। ये दूसरी बात। और तीसरी सीटिंग कहां बैठी, गोकर्ण और धुंधुकारी वाली, एक कलयुग के करीब करीब बतलाया है भागवत में। कितने दिन बाद, पहला वाला तो हुआ कृष्ण के चले जाने के बाद में सुखताल में, 30 वर्ष के पश्चात में, 30 वर्ष के अंदर में परीक्षित महाराज जी ने सुना। और दूसरा हुआ कितने वर्ष के बाद, याद है, 2 ये हुआ और उसके 100 वर्ष के समझो करीब, और 200 वर्ष बाद में हुआ वो धुंधुकारी गोकर्ण वाला, वो तीसरा। इस तरह से पहली बार में तो वो हुए परीक्षित महाराज जी को गोलोक की प्राप्ति हुई, वो कृष्ण के परिकर थे, जगत के जीवों के लिए ऐसा उन्होंने दिखलाया कि हमको सांप काटने वाला है, उनको सांप नहीं छू सकता, सुखदेव गोस्वामी जी से कम नहीं है, किंतु जगत के लिए ये श्रीमद्भागवत रूप पुराण सूर्य प्रकाश करना था, जो जब तक ये जगत की सृष्टि रहेगी तब तक जीवों का कल्याण होता रह गया। वो सुनेंगे, लाख आदमी सुनेंगे, उनमें 1-2 तो जन भले ही उनका ये ज्ञान होगा और भगवान का भजन, सबका नहीं होगा, क्यों, वो अच्छी तरह से मन से इसको पालन करने के लिए नहीं सुनते। परीक्षित महाराज जी जैसा ने सुना सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा कोई सुने अथवा भक्ति देवी ने और उनके पुत्रों ने और नारद जी ने चतुर्सन से जैसा सुना और जैसे धुंधुकारी ने गोकर्ण से सुना और उनके सभासदों ने पीछे से सुना, वो लोग सुन करके वो लोग बैकुंठ में चले गए। हम लोग क्यों नहीं जा रहे, लाख बार सुनते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करके एकाग्र चित्त से इसको पालन करने के लिए नहीं सुनते, उस रंग में रंग नहीं जाते, इसलिए ऐसी दशा हो जाती है। जिनको भागवत की कथा सुनने से गोलोक बैकुंठ की और उसे भी ऊपर ब्रज की प्राप्ति हो गई, उसको अब संसार में रुपए पैसे वाणिज्य व्यवसाय या और कोई करने की जरूरत है कि नहीं है, है किंतु फिर भी हम ब्रह्म में रहते हैं। इसका कारण यही है, हम एकांतिक चित्त से सचमुच में उसको पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए हम नहीं करते, संसारिक दुख कष्ट को दूर करने के लिए और कुछ सुख साधारण सा प्राप्ति करने के लिए कर लेते हैं, बस भागवत सुनना हो गया। अरे आजकल अधिकांश प्राय 100 में से 100 कभी कोई बिरला यदि हो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो 100 में से 100 रुपए पैसे के लिए भागवत पाठ करते हैं। अभी हमारे पास में बहुत से पंडित अभी आते हैं, महाराज जी आप बंबई जाते हैं, आप पुणे जाते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारी रोजी रोजी भी लगा दीजिए, भागवत में सुना उन लोगों को, कल भी एक आए थे जे आप यहाँ पर हमारे लिए भागवत रखते, बोले भागवत तो रख देंगे किंतु पैसा टैसा नहीं मिलेगा। हम लोग लोगों से कह देते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम लोगों का हृदय चाहिए, तुम लोग भगवान का भजन करो, इसलिए हम लोग भागवत सुनाते हैं, पैसे के लोभ से नहीं। तुमका मन खराब हो जाता है, लौट जाते हैं। तो अधिकांश लोग इसी तरह से करते हैं, कीर्तन भी इसी तरह से आजकल बेचा जा रहा है, ये सब बेचे नहीं। सचमुच में यदि कोई इस तरह से भागवत की कथा सुनेगा निश्चय उनका परम कल्याण होगा और ये जगत में नहीं रहेंगे, इसको छोड़ करके चले जाएंगे माया के पास, गोलोक प्रेत में जरूर चले जाएंगे। आप लोग इसी तरह से सुनेंगे, हम लोग ये नहीं कहेंगे जैसे आप लोग प्रणामी दीजिए, प्रणामी अपनी श्रद्धा दीजिए, यही प्रणामी रहेगी। हम लोग जैसे अन्नकूट होता है, भागवत वाले क्या करते हैं, पाठ करके भागवत में कहते हैं ये अन्नकूट होगा और 56 का दर्शन होगा, हजारों रुपए बन जाते हैं, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, होगा थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग दे देंगे जिसकी जो श्रद्धा होगी, हम लोग उस रूप में नहीं करेंगे। हम लोग सुदामा जी का में चावल और चिड़वा का कोई कारोबार नहीं करना है, वो किसका विवाह होता है ना, रुक्मिणी जी का, रुक्मिणी जी का विवाह हमें अपने हृदय में कराएंगे भगवत भक्ति के लिए। बामन के दिन में छत्ता और ये सब की हमको जरूरत नहीं है, आपको छत्ते की जरूरत है, कृष्ण की कृपा रूपी छत्ता आपको हम लोग देंगे, ये भागवत देगा। इस तरह से शुद्ध रूप में भागवत सुनने की चेष्टा करें, यदि एक आदमी भी यदि सुना इस रूप से निश्चय उसका कल्याण होगा। इस तरह से मैंने संक्षेप में इसका कुछ साथ बतलाया, आप लोग ऐसे बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे, शाम को भी भागवत में आएंगे, अपने और भी सखाओं को, परिवार को, सहेलियों को, सबको लेकर के बड़े प्रेम के साथ में सुनिए यहाँ पर भागवत। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अब ये शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको प्रारंभ से भागवत का महात्म्य और जो सब चीज़ें हैं नियमित रूप में आपको समझाएंगे, और बीच बीच में कभी कभी मैं आकर के कुछ उसके सार के संबंध में कुछ बतलाने की चेष्टा करूँ। गौर प्रेमानंदे आरंभ करो।
ताय नमो नमः।
आज आप लोगों ने सवेरे और इस समय ध्रुव चरित्र, उत्तानपाद का चरित्र और महाराज प्रियव्रत का चरित्र आपने श्रवण किया। ये बातें सतयुग की हैं, 80 करोड़ों वर्ष पहले की बात। उस समय भगवान को पाना कितना कठिन काम था ये ध्रुव जी के चरित्र से समझे होंगे। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी लेनी, और तब जाकर के 6 महीने के अंदर में ही भगवान ने उसको दर्शन दिए, और वो भी दर्शन दिया एक क्षण के लिए, कोई उनकी सेवा ग्रहण नहीं की, उनसे बातचीत नहीं कुछ किया, और बोले जे जाओ 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी का राज भोगो। दिया क्या? एक मैल दिया, उसमें कुछ भगवान की सेवा लाभ नहीं हुई, वो तो हुई जब ये संसार छोड़ करके गए तब ध्रुव लोक में स्थित हुए, वहां पर भी भगवान की कौन सी प्रेममयी सेवामयी सेवा मिली उसको इतना कठोर तपस्या के बाद भी। इसलिए भगवान जब से तब से योग से दान से तीर्थों के स्नान से नहीं मिलते, वो ब्रज के भावों के अनुसार में गोपियों के अनुगत्य में या ब्रज गोपों के अनुगत्य में प्रेममयी सेवा से मिलते हैं। इतना कठोर तपस्या किया और देखो कलयुग में एक वेश्या थी, उसने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बस झट ऐसी हो गई कि भव सागर को पार करके भगवान की सेवा में चली गई। जगाई मधाई इत्यादि थे, कैसे भगवान का आश्रय करके नाम और उनकी लीला कथाओं का श्रवण करके भव सागर को क्षण मात्र में पार हो गए और गोलोक वृंदावन में पहुंच गए। कलयुग का यही महात्मा है कि समस्त दोषों के रहते हुए भी यदि कोई लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करें, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करें, तो सहज ही ये संसार को प्राप्त होकर के सदा के लिए भगवान का दर्शन और साक्षात सेवा करेगा। ध्रुव को क्या मिला, इस जगत में रह करके उन्होंने भगवान को का साक्षात कोई सेवा किया, पर जगत में भी उस लोक में गए जहाँ पर कि ध्रुव लोक है और बहुत दूर से सेवा करते हैं, ब्रज की भावना से नहीं करते, हनुमान की तरह नहीं करते, गोपों की तरह में नहीं करते। प्रिय भक्त का भी चरित्र आप लोगों ने सुना कैसा सुंदर, उसमें भवाट्री का भी ये सब सुनाएंगे और अभी लीलाओं का वर्णन किया, अभी इसके बाद में भरत जी का चरित्र आएगा। हम उनके संबंध में दो चार बातें मैं कहता हूँ क्योंकि समय हो गया है, 7 तक प्राय बजी गया है, दो चार मिनटों में उपसंहार इसका करेंगे। ध्रुव जी के चरित्र से भरत जी का चरित्र का कुछ अधिक वैशिष्ट्य है। भरत जी अपने समय से, इस समय से करोड़ों वर्ष पहले ध्रुव जी के बाद प्रियव्रत राजा के बाद में हुए, वो 100 भाई थे, अपने पिता के पुत्र थे 100, एक ही पिता, उसके 9 जो भाई थे वे 9 जोगेंद्र हुए, जाति पाति से ऊपर उठ करके ब्रह्म तत्व वेताओं में भी सबसे उत्तम हुए, इनकी जाति कुछ नहीं, और 81 आदमी ब्राह्मण हुए कर्मकांडी, और भरत महाराज अकेले परम भगवत भक्त हुए। इन सब लोगों से श्रेष्ठ भगवत भक्ति ऐसी है, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्यागी होकर के रहे, यदि भगवत भक्ति का आश्रय किया है तो ये ब्रह्म वेताओं से भी बड़े ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भरत महाराज जी एक ही माता पिता के पुत्र होने पर कोई ब्राह्मण हुआ कोई क्षत्रिय हुआ और कोई ब्रह्मज्ञानी बने। आज जैसा ये कानून नियम नहीं था, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाएगा, जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण का पुत्र होने पर भी रावण जैसा असुर इत्यादि कहलाएगा। यदि हम कहते हैं चतुर्वेदी एंड शू कंपनी, तो वो चतुर्वेदी रहा
नहीं रहा,
तो वो चमार इत्यादि की गिनती में आएगा क्योंकि उसी का कारोबार कर रहा। इसलिए पिता के पुत्र के रूप में जो होते हैं और उसका कर्म नहीं करते हैं तो उस जाति के नहीं माने जाएंगे। एक शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी यदि भगवान का भजन करता है तो जाति पाति से बहुत अतीत है, उसको शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं समझ करके भगवान का सेवक कर समझना है। हरि का भजा सो हरि का हो, यदि उसको ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं तो यह अपराध होता है। सुखदेव गोस्वामी को मत समझो कि वो शूद्र के थे लड़के, व्यास जी को शूद्र मत समझो, नारद जी को शूद्र मत समझो, कृष्ण को ग्वाला केवल मत समझो या जादव मत समझो, राम को क्षत्रिय मत समझो, नहीं तो क्षत्रिय लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं, इस चीज को समझो। ये शरीर में जब तक हम हैं
प्रकृति के गुणों को ही मान लेते हैं जब मैं हूँ, अर्थात इसके इस शरीर में आत्मा इससे अलग है, वो आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुआ नहीं है, उसमें अभी जो मैं और मेरा दिख पड़ता है ये प्रकृति का धर्म है। और प्रकृति का यह अभिमान लेने से ही हम ये समझते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ और ये सब समझते हैं। असल में जीवात्मा भगवान का सेवक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ऐसा समझने वाला समदर्शी है, वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों में जाति पाति का भाव नहीं लगाना चाहिए। भरत महाराज जी अपनी उम्र से जब उनकी आधी उम्र हुई, आधी उम्र कितने उम्र में हुई, कितने हजार वर्षों में, 50,000 वर्ष की उम्र में उनकी आधी उम्र पूरी हुई। उसी समय में संसार को दुख में जानकर अपने इस संसार में रहने वाले बेटे को, बेटियों को, स्त्री को, संपत्ति को छोड़ करके और भगवान का उपासना करने के लिए वन में चले गए, तपस्या करने नहीं, आराधना करने के लिए। तपस्या में और आराधना में बहुत अंतर है। तपस्या अपने शारीरिक दुखों को अवलंबन करके, अर्थात शरीर को नाना प्रकार से कष्ट दे करके, उपवास रह करके, अग्नि ताप करके, कुछ नहीं खा करके जो तपस्या होती है वो अलग चीज है, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे मन के से, आत्मा से जो प्रेम भगवान का होगा, प्रेम से जो उनका भजन होगा, उसको कहते हैं आराधना। जैसे हम लोग आप लोग कर रहे हैं ये आराधना है, ये तपस्या नहीं है। इसमें कितना आनंद है, कीर्तन हो रहा है, भगवान की लीला कथाएं हो रही हैं, और जाएंगे तो पेड़ा प्रसाद मिलेगा आप लोगों को, और घर में भी ये सब की चिंता करेंगे, इसलिए ये आनंदमय, ये आराधना है। खूब पेट भर करके ठाकुर जी का पूरी पकवान, लड्डू, पुआ, कचौड़ी खूब खाओ, और खा करके हरी बोलो, हरी बोलो, गौर प्रमाण, ये उपासना है, तपस्या नहीं है। तपस्या में का सारी कष्ट होता है, इसलिए वो आराधना करने के लिए गए और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। करते 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 वो शारीरिक गुणों से ऊपर उठ गए, मैं और मेरे के अभिमान से कुछ ऊपर होने लगे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, इस स्थिति में पहुंच गए। किसी के लिए कोई दुख की जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं, बस भगवान की सेवा हो, और सुख दुख को बराबर समझने लग गए, सब में समदर्शी हो गए। अब क्या होता है, इसी समय में भगवान कुछ शिक्षा देने के लिए जगत को, देखो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर भी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और उसके बाद में भाव अवस्था में आप पहुंचने ही वाले थे या पहुंच रहे थे, ऐसी उत्तम स्थिति। और उस समय में एक हिरण के बच्चे को पानी में डूबते हुए देखा, उसकी मैया सिंह के गर्जन के डर से नदी को छलांग देते समय में उसके गर्भ से एक बेटा नदी में गिर गया, और वो बाहर में जाकर के नदी के उस पार जाकर के छटपटाती हुई बच्चे की तरफ में देखती हुई और वो मर गई। इन्होंने देखा, भरत महाराज जी उस समय में भगवत आराधना में कुछ कर रहे थे, इतने में उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी और बच्चे पर पड़ता, अरे ये मेरे देखते देखते मर जाएगा, इसकी मैया तो मर गई और मैं यहाँ पर हूँ, जीवों पर उपकार करना मेरा धर्म है, इसलिए वो उठ करके और चले गए। जाते ही उस बच्चे को उठा लिया और उसने समझा जी मेरी मैया है, बड़े उसके तरफ में प्रेम से देखने लगी। इन्होंने अपने आश्रम में उसे ला करके गैया के दूध से उसका पालन पोषण करना आरंभ कर दिया, और धीरे धीरे बेटा जैसा स्नेह, ममता और आसक्ति उसके प्रति हो गई। अरे अपने बेटे को तो छोड़ा, स्त्री को छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ा, और प्रौढ़ावस्था में इनको न जाने कहां से एक हिरण के बच्चे पर ये ममता जगी, ये मेरा बेटा ही है, पालन पोषण करने लगे। और वो बच्चा ऐसा फुदकता हुआ उनकी गोदी में छलांग मार करके बैठ जाता। जब वो ध्यानस्थ होने की चेष्टा करते, अभी सिंह तो उठी नहीं थी, वो ऐसे ऐसे करता पीछे से, और जब वो देखने लग रहे तो बस उनकी गोदी में बैठ जाता, चुपचाप बैठ जाता, अब उसको वो दुलार करने लगते, स्नेह करने लगते, आसक्ति बढ़ते गई, जैसे हमारी आसक्ति संसार में बढ़ती है। देखो कहाँ वो मुक्त होने जा रहे थे और वहाँ से इस संसार में आसक्ति हो गई, बाल बच्चों को तो छोड़ा और इस पर हुई। हम लोग कुत्ते रखते हैं, कुछ देते हैं, बस कुत्तों पर स्नेह आ जाता है, भगवान तो छूट जाता है। माता पिता को दूध नहीं खिलाते, कुत्ते को खिलाते हैं। माता पिता को कार में नहीं ले चलते, कुत्ते को कार में ले चलते हैं और उसको झबरे कुत्ते को स्नान करते हैं, कराते हैं साबुन लगा करके, सोते समय भी उसको गोदी में लेकर के सोते हैं, तो उनकी क्या दुर्गति होगी। अरे ये तो मरकर के हीण हुए कुत्ते होकर के होंगे, इसलिए कुत्तों का ऐसा पालन मत करो, गरीबों पर दया करो, किंतु उसकी आसक्ति में बंधन करके मरो मत, नहीं तो तुम्हारा जन्म भी वैसा ही होगा। भूतों की चिंता करते हुए मरोगे, भूत बनोगे, देवताओं की चिंता करते हुए देवता जैसा बन करके फिर वहां से लौट आओगे। और माम उपत्यतु कौन से पुनः जन्म देते, भगवान की चिंता करते करते भगवान के पार्षद होकर के उनकी नित्य सेवा में जाओगे, फिर जन्म से अतीत हो गए। इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। ऐसे करते 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 जब वो बड़ा हो गया तो वो कहते हैं, ओ आज मेरा धन्य है भाग, आज पृथ्वी का धन्य भाग है, ये ऐसा कृष्ण सार हिरण पृथ्वी पर जहाँ चरण रखता है वहाँ की पृथ्वी पवित्र हो जाती है और वो यज्ञ करने लायक पवित्र यज्ञ बन जाती है। आज ये पृथ्वी धन्य हो गई इसके चरण की धूलि पाकर। इसी प्रकार से आसक्त होते 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 जब उनका अंतिम समय आया तो एक दिन फुदकता हुआ हिरणों का दल देखा और उसमें छलांग मारता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, अरे भगवान कहाँ गया, तुम्हारा साधन भजन कहाँ गया, इसको तो परवाह नहीं तुमने की, और परवाह कर रहा है कहाँ, मरने की तरफ में जा रहा है, हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया। ऐसे करते 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 इतने में काल आया और चिंता करते 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 वो मरा और मरते समय में वो स्मृति उनको हिरण बना दिया। इसलिए हम लोगों को अभी से कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी जगह भी अपनी चिंता मत लाने दें, ये तो हिरण हुए। यदि हम लोग भगवत चिंतन करें और करते करते देखें गोपियां हमारी आराध्य हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, कोटि कोटि गोपियां उनके चारों तरफ में घेर करके उनकी सेवा करते हुए रास इत्यादि कर रहे हैं। कैसे एक गोपी राधा जी की सेवा कर रही है, ऐसी चिंतन करते करते यदि हमारी मृत्यु हो तो हमारी वैसे ही स्थिति होगी, हम इस जगत में फिर नहीं आएंगे, गोलोक वृंदावन में सीधे जाएंगे। इसलिए भागवत कथाओं की अवतारणा की गई है, ऐसे ही तुम चिंतन करो, संसार की कोई भी चिंता मत करो, नहीं तो फिर संसार में आना पड़ेगा। भरत महाराज जी भक्ति में बहुत ऊपर उठ गए थे, भावावस्था में उठ गए थे, इसलिए हिरण होकर के पैदा होने पर भी उनको जाति स्मर हुआ, अर्थात उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। हम लोग मरते हैं तो याद नहीं रहेगी, क्योंकि उतना साधन भजन तो किया नहीं, हमारी यानी कहाँ दुर्गति होगी, कोटि कोटि जन्म लग जाएंगे। वो जाति स्मर होने के कारण, भावावस्था तक पाने के कारण तीन जन्म में ही उनका उद्धार हो गया, दूसरे जन्म में हिरण होकर के पैदा हुए और जहाँ पर वो मरे थे उसी जगह पास में गंगा और गोमती नदी का संगम है, वहीं पर सोनपुर अभी वर्तमान उसका नाम है, बहुत बड़ा भारी विराट मेला लगता है, वहाँ पर ऋषि महर्षि लोग तपस्या करते थे, साधन करते थे, वहीं पर रहते थे, इसलिए उनका जन्म भी वहीं पर हुआ। अब उनको जाति का पूर्व जन्म का बात याद होने से वो हिरणों का दल छोड़ दिया, ऋषियों के समीप रहते, जो कुछ टुकड़ा मिल जाता खा लेते, पास ही घास चर लेते और गंगा में जा कर के स्नान करते और वहीं पर पानी पी लेते, फिर आश्रम में आकर के बैठ करके हरि कथाओं का श्रवण करते। कुछ दिनों में ही उनका कर्म फल नष्ट हो गया और उनका शरीर बदल गया, अब इस बार ब्राह्मण बालक होकर के आए। पहले जन्म का ही इनको याद है, इसलिए बचपन से ही मूढ़ बन गए, जान सुनकर के पागल बन गए। पिता माता बड़ा होने पर उनको ओमकार उच्चारण करने के लिए शिक्षा देते, यज्ञोपवीत करना चाहा, ओंकार ही नहीं उनको उच्चारण आया, ओम नहीं बोल सके, कख गघ नहीं बोल सके, अ आ नहीं बोल सके,
बेटा पिताजी ने कहा ये कहाँ से ये ऐसा लड़का उत्पन्न हुआ, ये गूंगा न जाने कैसा, स्नान भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, खाता भी नहीं है, ऐसे क्या किया जाए। जब उसकी मरने की जब मरने का समय आया, उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को कहा देखो ये भरत छोटा सा लड़का है, कुछ समझता नहीं है, पागल, इसका तुम पालन पोषण करना। उनके हाथों में दे करके वो चले गए। अब ये जब और बड़ा हुआ, खेत की मेड़ पर इसको रखवाली के लिए भेज दिया जाता। वहां पर कुछ चोरों ने इनको पकड़ लिया और इनको देवी के सामने में कुरुक्षेत्र में बलि देने की चेष्टा की। ये आज हमको बहुत रुपया पैसा मिलेगा तो इसकी बलि देंगे। जब उनको बलि देने के लिए ले गए तो ये भी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने भेड़ और बकरे को जैसे पकड़ करके ले जाया जाता है वैसा ले गए। इन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, पीछे पीछे चल गए। उस समय उनकी उम्र 15-16 वर्ष की थी। जब देवी के सामने ले जा करके खिलाया, पूरी और भिजा हुआ चना गुड़ उनको खिलाया तो पेट भर कर खाया। समझ रहे हैं कि हमको ये बलि देंगे। तभी भगवान के भक्त निर्भय एकदम होते हैं, निर्भीक होते हैं, शरणागत जन, मृत्यु से डरते नहीं हैं, इसलिए निर्भीक रहे। उन लोगों ने खिला पिला करके गले में लाल कपड़ा बांधा, सेंदूर लगाया, फूल की माला दी और बोले जैसे इस काट के अंदर में तुम अपना शरीर शीर लगा दो। बलि को जहाँ पर बलि दी जाती है देवी को, लकड़ी की बनी हुई इसमें रहती है, उसमें घुसा देते हैं और कील ठोक देते हैं जो हट्टस से मश न हो। जानवरों को भी ऐसा करते हैं और तब फरसे से ऊपर से मारते हैं। जब गले में लगा दिया इन्होंने शीर, कभी ये भी नहीं कहा कि हमको क्यों मारते हो, मैं निर्दोष हूँ, ऐसा मत करो, कहा कुछ भी नहीं कहा। बस प्रसन्न चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, और अपने चित्त को एकदम भगवान में लगा दिया। शरीर का अभिमान नहीं, राज्य में कहाँ हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, चित्त एकदम भगवान में लगा दिया। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने मंत्र से मंत्र उच्चारण करके और तलवार उठा करके उसको मारना यूं चाहा, फरसा काटने। इतने में देवी ने बड़ी जोर से अट्टहास की, बड़े जोर से हंसी और हंस करके हंसने से ऐसा गर्जन किया उनके हाथों से फरसे गिर गए और फरसे को उठा करके साक्षात रूप से उनको काटा और काट करके उनके पैर उनके मुंडों से जैसे फुटबॉल खेला जाता है खेलते उनको लेकर के अग्नि में सुहा और इनसे हाथ जोड़ करके बोलिए प्रभु आप अपना यह महात्मा हमसे छिपा करके रखते हैं जगत के इस बात, ऐसा ना कीजिए, जगत के लोग आपको समझेंगे नहीं, साधारण पागल समझेंगे जैसे आपके माता पिता समझते हैं, इसलिए अपना स्वरूप इस प्रकार से मत रखें। और उनसे प्रार्थना करके क्षमा मांग करके फिर मूर्ति में चली गई। ऐसे भक्तों का लोग देवी भी भक्तों की कृपा चाहती हैं और लोगों की तो बात क्या। इसलिए यहाँ पर मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि, जब यहाँ पर देवी का जागरण होता है, शराब लोग पीते हैं उसे मत्त होकर के, बड़ा दुख होता है, बड़ी भीड़ भी उनके सामने में इकट्ठी हो जाती है और तरह तरह के गाने उच्छृंखलताएं वहाँ पर होती हैं। उसके बदले में भगवान का नाम करते इस कृष्णपुरी में तो कितना सुंदर होता है, नहीं करते हैं। देवी भी इनकी प्रशंसा कर रही है, इनकी स्तुति स्तव करती है। इसके बाद में एक दिन पालकी पर उस देश का राजा रहुगण जा रहा था, वो जा रहा था कपिल देव जी के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा के लिए। इतने में उसका एक कहार बीमार पड़ गया, कहारों ने पालकी रख दी। कहा जी अब पालकी कैसे जाएगी, राजा ने कहा जो सामने पड़े उसको पकड़ लो। सामने में इनको देखा मोटा सोटा तगड़ा, पसंद को पकड़ लाए, पालकी में लगा दी, पालकी में लगा दिया तो पालकी में लग गए, चलने लग गए। थोड़ी देर के बाद में एक चींटी या कोई कीड़ा मकोड़ा देखा तो उसे बचा करके चलने का प्रयास किया तो पालकी डोलने लग गई। राजा कहता अरे कहारों जरा ठीक से चलाओ सावधानी से। उन्होंने कहा हाथ जुड़ के महाराज हमारा दोष नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, किंतु ये जो नया वाला आदमी है ये पालकी चलाना जानता नहीं, नया है, इसलिए ये पैर में पैर मिला करके नहीं चलता, इसलिए पालकी हिल रही है। उन्होंने कहा जे तू बड़ा दुबला है, तुम चल नहीं सकता, तुम नाटा खोटा है। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं उस पर किया। इसके बाद में वो बिगड़ गया राजा, बोला जब तुम जानते नहीं मैं देश का राजा हूं, मैं तुमको भी दंड देता हूं, ठीक से पालकी चलाओ और नहीं तो अभी तुम्हें दंड दूंगा। उनको भक्त जो थे भक्त की वो कुछ मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा ये कौन दंड देने वाला कौन और दंड ग्रहण करने वाला कौन, तुम राजा बना ये तुम कौन है, मुझको जो प्रजा समझ करके मुझे जो दंड देना चाहता है मैं कौन हूं, कौन दुबला पतला